इस हफ्ते माइंड विद मसल पॉडकास्ट में क्वेश्चंस ऑफ द वीक, हफ्ते में या दिन में कार्डियो कितना करना चाहिए, हैवी लिफ्टिंग का जॉइंट हेल्थ के ऊपर किस तरह का असर आता है लॉन्ग टर्म में, बेंच प्रेस लगाते हुए ट्राइसेप के ऊपर ज्यादा लोड आता है तो क्या किया जाए, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए मसल बिल्ड कर पाना पॉसिबल है, ट्रेनिंग विद नवजोत वर्कआउट सीरीज या फिर पंप्ड अप पीपीएल वर्कआउट सीरीज, दोनों में से कौन सा बेटर है, 422 का कॉन्सेप्ट आप अपनी ट्रेनिंग में कब और कब तक इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल दिस एंड मच मोर इन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ द माइंड विद मसल पॉडकास्ट। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल पॉडकास्ट। मेरा नाम है नवजोत सिंह। आपके सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले क्विक अपडेट्स अबाउट यूट्यूब चैनल या फिर चैनल्स मैं कह लूँ, क्योंकि इस हफ्ते एक नया चैनल शुरू किया है मैंने, अनफिल्टर्ड पंजाबी। ये पंजाबी चैनल है, पंजाबी लैंग्वेज में होगा, जो मेरे पंजाबी भाई हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये चैनल शुरू किया। इस चैनल में बहुत ही ज़्यादा आपको रॉ ओपिनियंस मेरी देखने को मिलेंगी, जो जैसा मैं हूँ, जो मेरे दिल में है वही मेरे ज़ुबान पर होगा इस चैनल के ऊपर। सो जो लोग मेरे पंजाबी भाई मुझे फॉलो करते हैं माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर वो पंजाबी में देखना चाहते हैं मुझे फिटनेस की बात करते हुए, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और जो जो भी हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में चलता है, जो हमारे समाज में चलता है, इसके बारे में बिल्कुल रॉ ओपिनियंस आपको इस चैनल के ऊपर मिला करेंगी। अगर आप पंजाबी हो, पंजाबी भाषा आपको समझ में आती है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव चैनल साबित हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक आपने चैनल जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके कीजिए। दूसरा, जो माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इस हफ्ते दो वीडियोज़ मैंने रिलीज़ की हैं। पहली वीडियो है HRV के ऊपर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जिसका जिक्र मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में आपसे किया था, वो वीडियो अब रिलीज़ हो चुकी है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत ही बढ़िया एक टूल साबित हो सकता है आपकी ट्रेनिंग को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए। तो ये काम आपने कैसे करना है, क्या HRV, किस तरह से आपने उसको मेजर करना है और कैसे आप इससे फ़ायदा ले सकते हो मसल बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ बिल्डिंग में, अपनी रिकवरी में, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर नहीं देखी अभी तक तो जाके देखिए। दूसरी वीडियो जो मैंने रिलीज़ की थी, सेकंड फेज़ पम्प्ड अप PPL वर्कआउट सीरीज़ का जो सेकेंड फेज़ है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने रिलीज़ की है। इसमें मैंने आपको बताया है कि आपने वर्कआउट में और डाइट में किस तरह के चेंजेस करने हैं इस वाले फेज़ में, जिस भी तरह से आपने वर्कआउट करना है, जो चेंजेस करने हैं अगले 4 हफ्तों के लिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। तो अगर ये दो वीडियोस आपने नहीं देखी अभी तक, जाके एक बार देखिए, ज़रूर आपको पसंद आएंगी, बहुत ज़्यादा सीखोगे आप इससे। शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। पहला सवाल पूछा है आशु 7108, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं हैव यू ट्राइड FLP एलोवेरा। यार FLP कौन सी कंपनी है मुझे नहीं पता है, लेकिन एलोवेरा अगर आप पूछ रहे हो, जो आते हैं आजकल, पतंजलि का आता है ये, वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, एलोवेरा मैंने ट्राई किया है काफ़ी सारी कंपनीज़ का, और मुझे मैंगो हर्ब्स का एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक्चुअली आप लोग जानते ही होंगे, अक्षय पाजी अपने VR स्टूपिड वाले, उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भेजे थे और मैं भी चाहता था कि मैं एक बार उनके प्रोडक्ट्स सारे देखूं, चेकआउट करूं, अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं बताऊं। और मैंने अभी तक उनका एलोवेरा जो जूस आता है वो ट्राई किया है, गिलोय जूस आता है वो ट्राई किया है, शिलाजीत मैंने ट्राई किया है, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद अश्वगंधा मैंने ट्राई किया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो कि मैं आने वाले टाइम में ट्राई करूंगा और देखूंगा कि अच्छे लगते हैं मुझे, नहीं अच्छे लगते हैं, जिस भी तरह का फीडबैक होगा वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, और ज़रूर मैं अक्षय सर से भी बात करूंगा इस चीज़ के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं और क्यों पसंद आ रही हैं। तो एलोवेरा यस मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैंने कंटिन्यूसली कभी भी यूज़ नहीं किया था इससे पहले, मतलब अक्षय सर वाला जो मैंगो हर्ब्स वाला एलोवेरा, उससे पहले मैंने कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वैसे, मैंगो हर्ब्स का। एंड ऑल्सो ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं और अक्षय पारी हम लोग काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं मैंगो हर्ब्स के लिए, और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मैंगो हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो नवजोत NAVJOT MH। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, जो भी उनके ऑलरेडी डिस्काउंट काफ़ी सारे चल भी रहे हैं उनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो। अगला क्वेश्चन है Lucky_Banbhuara, लकी भाई मैंने आपका नाम की तो ऐसी की तैसी कर दी मुझे लगता है, लेकिन लकी भाई पूछते हैं वीरे कार्डियो कितना करना चाहिए एक दिन में या फिर एक वीक में, मतलब कि कोई रेंज है कार्डियो की। देखिए यार, रेंज ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, रेंज आपकी डिपेंड करती है कि आपका मकसद क्या है। आप एंड्योरेंस अगर डेवलप करना चाहते हो तो आपको अच्छा खासा कार्डियो करना पड़ेगा, अगर आप मसल एंड स्ट्रेंथ करना चाहते हो डेवलप तो फिर आपको कार्डियो के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को ये वहम होता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग के ऊपर ही फोकस करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की करते हो, तो उससे आपकी कार्डियो वेस्कुलर जो हेल्थ है वो इंप्रूव नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम फॉलो करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो मेनली, तो भी आपकी कार्डियो वेस्कुलर हेल्थ के ऊपर भी अच्छा खासा पॉजिटिव असर आता है। लेकिन अगर आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मसल तो डेवलप करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन कार्डियो करना उनको पसंद होता है, अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो जो जिनको कार्डियो करना पसंद है, तो आप 15-20 मिनट का कार्डियो कर सकते हो। इसमें कुछ खराबी नहीं है। खराबी इस चीज़ में है कि अगर आप कार्डियो को किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दो जिसके लिए कार्डियो को इस्तेमाल करना ख़राब है। आमतौर पे लोग फैट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्डियो को, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग इन माई ओपिनियन। मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करता हूँ, कभी भी मैंने वीडियोज़ में कहीं पर भी मैंने आपको रेकमेंड नहीं किया है कि आप कार्डियो को फैट लॉस के लिए इस्तेमाल करो। अदरवाइज 15-20 मिनट का कार्डियो 3-4 दिन अगर आप करना चाहते हो हफ्ते में, यू विल बी फाइन। आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के जो भी बेनिफिट्स आप लेना चाहते हो वो आपको मिलेंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो कार्डियो तो भी यू विल बी फाइन। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर अपना मेन फोकस रखते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेंज, जैसे आपने पूछा ना कि रेंज क्या है, एक हफ्ते में या एक दिन में कितना कर सकते हो, ऐसा कुछ रेंज, कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है कि मतलब हर रोज़ आप आधा घंटा करो और सभी करो, ऐसा कुछ फिक्स्ड रेंज नहीं होती किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई 9617JJ, बहुत ही मुश्किल नाम है इनका इंस्टाग्राम आईडी, इनके पूछते हैं What are the long term effects of heavy lifting on joint health? Okay, लोग मना करते हैं heavy lift करने को। सर, करते हैं लोग मना क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को देखा होता है जिनके joints में negative effect पड़ा है, या तो किसी के खुद के पड़ा है या फिर किसी ने किसी को देखा है कि joint health उनकी ख़राब हुई है, तो इसलिए लोग मना कर देते हैं। जॉइंट हेल्थ के ऊपर आपके असर आएगा या नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो। अगर आप ख़राब तरीके से हैवी लिफ्ट करते हो तो फॉर श्योर आपके जॉइंट हेल्थ के ऊपर, लिगामेंट हेल्थ के ऊपर, आपके बोन हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव असर आएगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, हैवी लिफ्ट करते हो बेशक, तो आपके इन सब चीज़ों के ऊपर खराब असर तो आना एक तरफ रहा, इनके ऊपर पॉजिटिव असर आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, हम हैवी लिफ्ट करते हैं ना, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे मसल्स स्ट्रांग हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो मसल्स हैं ना वो सिंगल यूनिट नहीं है, आपकी बॉडी से अलग नहीं है, आपकी बॉडी का एक पार्ट है। कभी भी हमें अडेप्टेशन बेनिफिट्स जो होते हैं वो सिर्फ मसल्स में नहीं मिलते, आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, आपके जो बोन्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी अडेप्टेशन बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मतलब आपकी बोन्स भी अडेप्ट हो रही हैं। जैसे जैसे आपका मसल स्ट्रांग हो रहा है, वैसे वैसे आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स सारी चीज़ें स्ट्रांग हो रही हैं और होना ही पड़ेगा। आप समझो ना कि अगर आपके मसल्स, सपोज करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, है ना, आप बहुत हार्ड तरीके के साथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ, तो उस मसल कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट कौन करेगा? उन हार्ड मसल कॉन्ट्रैक्शंस को सपोर्ट करेंगे आपके जॉइंट्स एंड आपकी बोन्स। तो आपकी बॉडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी बॉडी को बोन्स एंड जॉइंट्स को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, मतलब अडेप्ट करना ही पड़ेगा बोन्स को। बोन मिनरल डेंसिटी आपकी इंक्रीज़ होगी, आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, एज लॉन्ग एज आप अच्छे तरीके से लिफ्ट कर रहे हो, आपकी मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी जो है जॉइंट्स में बहुत अच्छी है, तो आपके जॉइंट्स के ऊपर इन सब चीज़ों का, हैवी लिफ्टिंग का अच्छा असर ही होगा। अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हैवी लिफ्टिंग का मतलब लोग समझते हैं कि आपने सपोज करो कि डेडलिफ्ट हैवी लगानी है, तो हैवी लिफ्टिंग का मतलब वो समझते हैं कि जैसे तैसे करके, बस कैसे भी करके ना लिफ्ट करना है, फॉर्म जाती है भाड़ में जाए। हैवी लिफ्टिंग का मतलब भाई ये नहीं होता है। हैवी लिफ्टिंग का मतलब जिम में ये है कि आप परफेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक के साथ किस तरह से और कितना वज़न उठा पाते हो, वो आपके लिए हैवी लिफ्टिंग है। ओके, मेरे लिए हो सकता है कि 20 किलो हैवी लिफ्टिंग हो, आपके लिए हो सकता है कि 200 किलो हैवी लिफ्टिंग हो। हैवी लिफ्टिंग का मतलब कोई एक नंबर नहीं होता कि मैंने इतना नंबर उठाना है, वो मेरे लिए हैवी लिफ्टिंग है। हैवी लिफ्टिंग ये नहीं होती। तो परफेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक के साथ अगर आप हैवी लिफ्ट करो, लाइट लिफ्ट करो, कैसे भी करो, आपको आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो ऐसे एकदम से नहीं पड़ता, आपकी बॉडी ना आपको सिग्नल्स एंड साइंस देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी बॉडी की सुनते नहीं हैं, हम सुनते हैं यूट्यूबर्स की, या फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो उल्टी सीधी फॉर्म के साथ, मैंने 100 इतने किलो की डेडलिफ्ट लगा दी, मैंने 200 किलो की डेडलिफ्ट लगा दी, हम उन लोगों को देखते हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वैसे ही करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बॉडी की आप सुनो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सेशन हैवी लिफ्ट किया है, किसी भी कोई भी एक्सरसाइज की, आपने एक सेशन आपने हैवी लिफ्ट किया, उसके बाद अगर आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रही है, अगर आपको हल्का हल्का सा दर्द फील हो रहा है, तो ये आपके लिए एक सिग्नल आपकी बॉडी का, आपको बताने का तरीका है कि भाई जिस तरह तरीके से तूने एक्सरसाइज की है वो एक्सरसाइज करना तेरे लिए ठीक नहीं है। या तो आपने इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, या फिर आपने फॉर्म एंड टेक्निक के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप रिपीटेड इस तरह की चीज़ें मत करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटू एंड पतलू, ये इनके इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं बेंच प्रेस लगाते हुए ट्राइसेप के ऊपर ज़्यादा लोड आता है, पाइप वाला वार्म अप भी करता हूँ, ऐसे क्यों? पाइप वाला वार्म अप ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने एक स्टिक को, अब मैं कैसे समझाऊँ, इसको कहते हैं शोल्डर डिसलोकेट्स, कि आप स्टिक को दोनों हाथों से पकड़ के अपने पीछे की तरफ लेके जाते हो एंड देन पीछे से फिर वापस आगे की तरफ लेके आते हो। ये बोल रहे हैं कि ये पाइप वाला वार्म अप करते हैं, उसके बावजूद भी इनके ट्राइसेप्स ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं। देखिए भाई, कोई भी मोबिलिटी एक्सरसाइज, चाहे वो आप जैसे बोल रहे हो पाइप वाला वार्म अप या फिर कोई भी एक्सरसाइज, आपको कितना करने की ज़रूरत है या फिर कितनी तरह की एक्सरसाइजेज मोबिलिटी रिलेटेड आपको करने की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है, कितने फॉरवर्ड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है बेंच प्रेस लगाते हुए, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है फॉरवर्ड शोल्डर्स की, तो हो सकता है कि मैं एक दो सेट लगाऊँ इसका मोबिलिटी एक्सरसाइज का और मैं परफेक्ट फॉर्म के साथ बेंच प्रेस लगा पाऊँ। लेकिन इसके उल्टा, अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसको दो या तीन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस लगानी पड़े उसके बाद, और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ लगानी पड़े, सही तरीके से लगानी पड़े, तब उनके शोल्डर्स थोड़े से पीछे को जाएं बेंच प्रेस लगाते हुए और वो अच्छे तरीके से लगा पाएं। तो आप जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पेन फ्री ट्रेनिंग में ना, एक वीडियो है कि शोल्डर राउंड शोल्डर्स को किस तरह से ठीक करना है, आप वो देखिए। उसमें मैंने जो दो एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एकदम से नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके राउंड शोल्डर्स हैं, आपने एक बार पाइप वाला वो वार्म अप किया और उसके बाद आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसको टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से टाइम लगता है। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ सकता है, तब आपकी ये प्रॉब्लम्स फिक्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है आशीष 26305, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं इज़ इट पॉसिबल टू बिल्ड मसल ड्यूरिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग स्पेशली फॉर जॉब पर्सन। देखिए आशीष भाई, मुझे पता है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है या हो रही है, स्पेशली अमंग उन लोगों के जो के फैट लॉस करना चाहते हैं। इंटरमीडियंट फास्टिंग, पहले तो क्वेश्चन करते हुए अगर आप मुझे ये बताते कि आप क्यों कर रहे हैं, तो मुझे बेहतर सीन सारा समझ में आता। लेकिन सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इंटरमीडियंट फास्टिंग आप कर रहे हो और जॉब भी आप कर रहे हो एंड आप मसल भी बिल्ड करना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जॉब के किस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, आपको टाइमिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उसके बाद जॉब की स्ट्रेस तो है ही। आप ऑफकोर्स, मुझे लगता है अगर जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि फैमिली भी हो आपकी, तो फैमिली की टेक केयर भी करनी है, और उसके ऊपर ये सारे स्ट्रेसेस हैं हमारी बॉडी के ऊपर, इस बात को समझिए। इन स्ट्रेसेस के ऊपर अगर आप फास्टिंग ऐड करते हो, तो फास्टिंग भी एक एडेड स्ट्रेस है आपके ऊपर, ठीक। स्ट्रेस का हमारी मसल बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। अगर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट सही नहीं है, तो जितना ज़्यादा खराब असर, जितना ज़्यादा नेगेटिव असर मसल बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेस का पड़ सकता है, और मुझे लगता नहीं कि किसी और चीज़ का पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप इन सारे स्ट्रेसेस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, तो भाई आपको थोड़ा बहुत कैलोरी के सरप्लस में रहना ही पड़ेगा, ये लॉ ऑफ नेचर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में सरप्लस में खाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप सरप्लस में लगातार रह पाओ इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हुए। तो मसल अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, इवन के जो फैट लॉस भी करना चाहते हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग का जिक्र क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर, जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं फैट लॉस करना चाहते हैं, क्यों हो रहा है ये जिक्र इतना ज़्यादा, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को इन जनरल, इंटरमीडिएट फास्टिंग है या कोई भी फॉर्म ऑफ फास्टिंग है, फास्टिंग का जिक्र मसल बिल्डिंग फैट लॉस के साथ क्यों हो रहा है, ये मेरी बिल्कुल समझ के बाहर है। भाई अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, फास्टिंग को अपनी ज़िंदगी से ना थोड़ा सा दूर रखो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फास्टिंग के बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग उन बेनिफिट्स में से नहीं है, इस बात को प्लीज़ समझिए। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम किसी भी अच्छी चीज़ को उठा के उसको मसल बिल्डिंग फैट लॉस के साथ जोड़ देते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना जो इंडियन कंटेंट बन रहा है, हमारे पास टॉपिक्स उतने ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो हम हर टाइम ना देखते रहते हैं कि कौन सी कोई फैंसी चीज़, कोई फैंसी लफ्ज़ हमें देखने को मिले और उस चीज़ को हम फैट लॉस के साथ जोड़ के लोगों को बताएं, उस चीज़ को हम मसल बिल्डिंग के साथ जोड़ के लोगों को बताएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। फास्टिंग का मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके गोल्स फैट लॉस मसल बिल्डिंग है, तो फास्टिंग से दूर रहिए। अगर आप अदरवाइज कोई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए अपने बॉडी को थोड़ा सा, अगर वैसे भी स्पिरिचुअल रीजंस भी होते हैं, अगर उन रीजंस की वजह से अगर आप फास्टिंग को इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी लाइफस्टाइल में तो अलग बात है, लेकिन फैट लॉस मसल बिल्डिंग नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनी फिटनेस होम पूछते हैं, मेक वीडियोज फॉर इम्बैलेंस मसल्स। ओके सर, सैनी भाई यार ऐसा है कि जो मसल इम्बैलेंसेज होते हैं ना, इनके ऊपर वीडियोस बनानी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और उसका रीज़न है कि मसल इम्बैलेंसेज के ना बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, पहली बात तो ये, एंड दूसरी चीज़ ये कि अलग अलग लोगों को प्रॉब्लम अलग अलग लेवल पे हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती है, किसी को बिल्कुल हल्की सी सटल सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, और दोनों के लिए एडवाइस अलग अलग होगी, दोनों के लिए एडवाइस अलग अलग होगी और अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग एडवाइसेस होंगी। तो इस वजह से कोई एक जेनेरिक सा आंसर नहीं दिया जा सकता कि अगर आपकी चेस्ट के मसल्स में इम्बैलेंस है तो आप ये काम कर लो। कुछ जेनेरिक लोग आंसर्स देते भी हैं, एडवाइसेस देते भी हैं कि जैसे यूनिलैटरल एक्सरसाइज कर लो या फिर ये कर लो वो कर लो, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काफ़ी बार ना रीजंस कुछ इस तरह के होते हैं कि जब तक आप इंडिविजुअल के साथ जिसको प्रॉब्लम है उसके सामने खड़े हो के आप असेस नहीं करते उसको कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, जॉइंट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, काफ़ी बार मसल्स में इशू हो सकता है, काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो जब तक आप प्रेजेंट नहीं होते उस बंदे के साथ तब तक उसको सही राह दिखाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर वीडियोस मेरे ख्याल से इसीलिए शायद बनी भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बनानी मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, चौधरी अंडरस्कोर सुमित ये पूछते हैं, ट्रेनिंग विद नवजोत और पम्प्ड अप PPL इनमें से कौन सा प्रोग्राम बेटर है। जिन लोगों को नहीं पता, ये दोनों ही प्रोग्राम मैंने बनाए हुए हैं, एक फुल बॉडी वर्कआउट प्रोग्राम है जो कि ट्रेनिंग विद नवजोत है, दूसरा पम्प्ड अप PPL पुश पुल लेग वर्कआउट प्लान है। और ये पूछ रहे हैं सुमित भाई कि दोनों में से बेटर कौन सा है। देखिए सुमित भाई, दोनों में से कोई सा भी आप फॉलो करोगे सिमिलर से आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये नहीं कि दोनों में से बेटर कौन सा है, क्वेश्चन ये है कि दोनों में से आपके लिए सूटेबल कौन सा है। और सूटेबल मैं टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर आप पम्प्ड अप PPL फॉलो करते हो तो आपको हफ्ते में 6 दिन जिम जाना पड़ेगा, तो अगर आपके लिए 6 दिन जिम जाना पॉसिबल है तो ये वाला प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल हो सकता है। कुछ लोगों को होता है ना कि 6 दिन उन्होंने जिम जाना ही जाना, चुल बड़ी मचती है, मेरे अंदर भी ऐसा ही है कि मैंने अगर जिम ना जाऊं तो मुझे अजीब सा लगता है। तो इस तरह से हमारे जैसे लोगों के लिए पम्प्ड अप PPL बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं जिनके पास 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग विद नवजोत बहुत ही अच्छा प्रोग्राम साबित हो सकता है। 3 दिन आपने जिम जाना है बस, तो ज़्यादा सूटेबल कौन सा है ये आपने अपने लिए देखना है, अदरवाइज दोनों ही प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हैं। ट्रेनिंग के जो बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनका मैंने ध्यान रखा है उन वर्कआउट प्रोग्राम्स में। आप कोई सा भी फॉलो करोगे सिमिलर से ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा अपनी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है DKFit_HIT ये पूछते हैं, 4-2 का टेम्पो 4-7 वीक्स के लिए सभी वर्कआउट्स में फॉलो करना है। यस सर, सभी वर्कआउट्स में आपने फॉलो करना है, कुछ वर्कआउट्स में पॉसिबल नहीं है, कुछ एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे कि अगर आप वॉकिंग लंजेस करते हो तो आपको 4-2 की बजाय अगर आप कंट्रोल्ड रेप्स लगाते हो, कंट्रोल्ड स्टेप्स लगाते हो तो भी सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस जिसमें ये अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि वेट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ जितनी भी एक्सरसाइजेस हम करते हैं, उन सभी में आपने 4-2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब 4-2 का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आए कि ये क्या, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 सेकंड आप लगाओगे किसी भी एक्सरसाइज में कॉन्सेंट्रिक पार्ट में, 2 सेकंड आप स्क्वीज करोगे मसल को, एंड 4 सेकंड लगाओगे आप इसेंट्रिक पार्ट में। तो इसको हम कहते हैं 4-2 का कॉन्सेप्ट, और ये आपने ऑलमोस्ट सभी एक्सरसाइज में आपने अप्लाई करना है पम्प्ड अप PPL के सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें आपने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके #mindwithmusclepodcast जब आप सर्च करोगे तो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। किसी भी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट आप कर सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको इस पॉडकास्ट में दिया जाएगा। फ्री वर्कआउट प्रोग्राम्स, लॉट्स ऑफ वर्कआउट टिप्स एंड ट्रिक्स, डाइट स्ट्रेटजीज के बारे में और जानने के लिए माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो 5-स्टार रिव्यू देके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी कर सकते हो। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग। यू हैव बीन लिसनिंग टू द माइंड विद मसल पॉडकास्ट।